राधाव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धामी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धामी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा बन चंदी यमुना तीरा बन चंदी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धामी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धामी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा बन चंदी यमुना तीरा बन चंदी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी पाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र शास्त्री श्रीमदी डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय नित्य लीला प्रतिष्ठान फॉर्म दुराचार्य शिव दी होलवर जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तिवृंद की जय श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय श्री श्री गौनताय भगवान की जय श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय समवेत भक्त वृंद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय गौर प्रेमानंद All glories to simple devotees, all glories to simple devotees, all glories to simple devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम दसम स्कंद अध्याय 78 दंतवक्र विदुरथ तथा रोम हर्षण का वध है। तो इसके पहले हमने सुना साल्व मारा गया भगवान के हाथों और इसने बहुत द्वारका में आतंक फैलाया हुआ था और जानते कितने दिन के बाद ही मारा गया, 27 दिन 27 रात लगातार द्वारका में इसने आतंक फैलाया और भगवान उस समय द्वारका में नहीं थे, भगवान थे इंद्रप्रस्थ में। तो फिर भगवान के साथ भी इसने काफी माया फैलाई और अंत में भगवान के हाथों उसका विमान नष्ट हुआ और वो खुद भी नष्ट हुआ। अब क्या हुआ, एक दूसरा खलनायक भगवान की लीला में खलनायक है, विलेन है ना, कौन है, दंतवक्र। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब परलोक में चले गए कौन, शिशुपाल, साल्व और पौंड्रक, ये कृष्ण के सब शत्रु, ये सब मारे गए, इस पृथ्वी में नहीं रहे। तो क्या हुआ, बहुत मैत्री भाव होने के कारण इन के प्रति दंतवक्र बहुत ही क्रुद्ध हुआ, बहुत क्रुद्ध हुआ दंतवक्र। जानते कौन है दंतवक्र, पिछले जन्म का कुंभकर्ण है और उसके पहले हिरण्याक्ष, शिशुपाल था हिरण्यकशिपु, फिर रावण और तीसरे जन्म में शिशुपाल बना, और ये दंतवक्र जो है पिछले से पिछले जन्म में हिरण्याक्ष था और पिछले जन्म में कुंभकर्ण और अब ये दंतवक्र। तो जन्म जन्म के साथी दोनों भगवान के शत्रु। तो शिशुपाल की मृत्यु हो गई, तो उसने जब सुना शिशुपाल की मृत्यु हो गई तो जो है बदला लेने के लिए आया, बहुत ही क्रोध होकर के युद्ध भूमि में आया। हे राजन, बिल्कुल अकेला पैदल, अकेला भी था और पैदल भी था, यानी अकेला था तो रथ में, कम से कम रथ में आता, नहीं रथ भी नहीं, बिल्कुल पैदल और हाथ में गदा लिए और कोई हथियार नहीं, हाथ में गदा लिए, उस बलशाली योद्धा ने अपने पद चाप से पृथ्वी को हिला दिया। सोचिए ये दंतवक्र कितना बलवान था कि पैरों के जो ना चाप से, मतलब चलता था तो पृथ्वी हिलाता था, है ना, ये बहुत बलवान था। आप समझो कि कुंभकर्ण के रूप में कितना बलवान था ये बड़ा मुश्किल हो गया था बंदरों की सेना के लिए कुंभकर्ण का युद्ध, और कुंभकर्ण भी बिल्कुल अकेला था, बिना सेना के मतलब युद्ध करता था, उसके पास भी कोई हथियार नहीं था, उसके पास फूल था उससे युद्ध करता था। तो यही दंतवक्र पिछले जन्म का कुंभकर्ण है, तो अकेले ही आया और बिना रथ के आया, और उसके पहले हिरण्याक्ष भी बिल्कुल अकेला युद्ध करता था, समुद्र को भी जो ना कंपित कर दिया, आतंकित कर दिया, और फिर भगवान वराह से भी अकेले ही उसने युद्ध किया, कोई सेना नहीं, अकेले अपने हाथ में गदा लिए था जब भगवान वराह के साथ युद्ध कर रहा था। तो ये जन्म जन्म का जो ना उसका स्वभाव है ये, बिना किसी रथ के और बिना किसी सेना के अकेले युद्ध करना, और शक्ति बहुत ज्यादा थी उसके अंदर। शिशुपालस्य सालवस्य पौंड्रकस्यापि दुर्मति परलोके गतानां च कुर्वन् पारोक्षय सौहृदम् एकापदाति संक्रुद्धो गदापाणि प्रकंपयन् पद्भ्यामिमां महाराजं महासत्तो विदृश्यते। उस समय क्या हुआ, दंत वक्र जब पास में आ रहा था तो भगवान कृष्ण तुरंत अपनी गदा उठा लेते हैं, जैसे को तैसा, बिना सेना की आ रहा है, बिना रथ की आ रहा है, तो भगवान कहते हैं कि ठीक है, जैसे तू वैसा मैं है, तो भगवान भी अपने गदा उठा लेते हैं और रथ से नीचे उतर आए। धर्म युद्ध, शत्रु के पास केवल गदा है, तो भगवान भी केवल गदा का प्रयोग करेंगे, उसके पास सेना नहीं है तो भगवान भी अपनी सेना का प्रयोग नहीं करेंगे, उसके पास रथ नहीं है तो भगवान भी अपने रथ का प्रयोग नहीं करेंगे, उसको संतुष्ट करना चाहते हैं भगवान, तो उसको रोका गदा के द्वारा, उसको रोका जैसे तट समुद्र को रोक देता है। समुद्र बहुत बलवान होता है लेकिन तट के आगे समुद्र बढ़ नहीं पाता है ना, तो भगवान जो है उसको उसी प्रकार रोकते हैं जैसे तट समुद्र को रोकता है। तम तथा यं तमालोक्य गदामादाय सत्वरा अवलोक्य रथात् कृष्णं सिंधुं बेले वे प्रत्यथात्। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जैसे ही कृष्ण दंत वक्र के समक्ष प्रकट हुए उसकी वीरता पूर्ण गति तुरंत रुक गई, जिस प्रकार सागर की अत्यंत भयानक लहरें किनारे द्वारा रोक ली जाती हैं। अब ये कारूस, इसको कारूस बोलते हैं, कारूस देश का राजा था दंत वक्र, तो इसने भगवान मुकुंद से कहा, अपनी गदा उठा करके भगवान मुकुंद से क्या कहा, बहुत ज्यादा उसको नफरत थी भगवान से, बहुत क्रोध था, तो क्या कहता है, अहो भाग्य, अहो भाग्य कि तुम आज मेरे समक्ष आए हो। उसकी बहुत इच्छा है, क्या मतलब, अकेले युद्ध करने की भगवान के साथ। गदाम उद्यम में कारोसो मुकुंदम प्राय दुर्मदा दृष्ट्या दृष्ट्या भवान अद्य मम दृष्टि पथम गतः। तात्पर्य लिखा है कि श्रील श्रीधर स्वामी बताते हैं कि तीन जन्मों तक प्रतीक्षा करते रहने के बाद दंत वक्र जो पहले वैकुंठ में द्वारपाल था, अब वैकुंठ लोक जा रहा है। तो इसमें एक भाव ये भी है कि अब बड़े सौभाग्य से आप मिल गए मुझे, मतलब मुझे वैकुंठ में भेज दोगे। तीन जन्मों से, क्योंकि इन दोनों द्वारपालों को चुनाव दिया गया था कि तुम अगर भक्ति करोगे तो 7 जन्मों के बाद वैकुंठ में आओगे, और अगर शत्रु बनोगे भगवान के तो 3 जन्मों में आओगे। तो उन्होंने कहा कि हमें जल्दी वैकुंठ में वापस जाना है, इसलिए हम भगवान के शत्रु बनेंगे। तो 3 जन्म ही तो बहुत ज्यादा थे, है ना, तभी वो कह रहा है बड़े सौभाग्य की बात है, बड़े सौभाग्य की बात है कि अब तुम मुझे मिल गए, मतलब तुम मुझे वैकुंठ में भेज दोगे। तो ये जो है श्रीधर स्वामी की टीका है कि मैं कितना भाग्यशाली हूं कि अब मैं वापस जा रहा हूं। हे कृष्ण तुम मेरे ममेरे भाई हो, तुम मेरे ममेरे भाई हो, तो दुश्मनी तो नहीं होनी चाहिए, ममेरे भाई हो, किंतु तुमने दुश्मन का काम किया है, क्या मेरे मित्रों की हिंसा की है तुमने, और अब तुम मुझे भी मार डालना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो तर्क दे रहा है भगवान के साथ युद्ध करने का कि ये उचित है कि मैं तुम्हें मार डालूं, क्यों, 2 कारण, एक तो तुमने मेरे मित्रों को मार डाला, और दूसरा तुम मुझको भी मार डालना चाहते हो। इसलिए मैं तुम्हें अपनी वज्र के समान गदा से मार डालूंगा। तम मा तुले यो नहा कृष्ण मित्रद्रुं माम जिघांससि अतस्त्वां गदया मंदयम् हनिष्ये वज्र कल्पयाम। अब आगे भगवान से क्या कहता है, हे मूर्ख, तब अपने मित्रों का कृतज्ञ मैं तुम्हें मारकर उनके ऋण से उऋण हो जाऊंगा। मेरे ऊपर बड़ा ऋण है उन मेरे मित्रों का, तुम्हें मार करके मैं उन अपने मित्रों के ऋण से छूट जाऊंगा। और तुम हालांकि मेरे संबंधी हो लेकिन तो भी तुम्हें मार डालना चाहिए। क्यों? जैसे शरीर में कोई रोग होता है ना तो आखिर शरीर में ही है लेकिन तो भी रोग को खत्म किया जाता है ना। तो हालांकि तुम मेरे संबंधी हो लेकिन तुम उसी प्रकार से हो जैसे शरीर में रोग हो। तो रोग शरीर में होता है लेकिन तो भी शरीर में खत्म करना होता है, उसी प्रकार मैं तुमको खत्म करूंगा क्योंकि तुम मेरे शरीर के रोग जैसे हो। तरिया निर्णयम अपम्यज्ञ मित्राणाम मित्रवत्सल बंधुरूपम अरिम हत्वा व्याधिम देह चरम यथा। इस प्रकार से कटु वचनों से कृष्ण को उसने बहुत तंग कर दिया। तो कृष्ण को भी तो बुरा लगता है, अगर कृष्ण से आप मधुर वचन बोलते हैं तो कृष्ण भी तो एक पुरुष है ना। तो कृष्ण प्रसन्न होते हैं लेकिन उसने कृष्ण को रुष्ट कर दिया इस प्रकार से। जैसे हाथी को अंकुश से क्या होता है, गुस्सा आता है, जब अंकुश मारता है महावत ऐसे गुस्सा आता है, उसी प्रकार से भगवान को उसने अपने वचनों रूपी अंकुश से क्या किया, विचलित कर दिया भगवान को। और इतना करके उसने क्या किया, भगवान के सिर में जोर से गदा मारी दोनों हाथों से उठा करके, पूरी शक्ति थी कृष्ण के सिर में गदा मारी। उसका तो पूरा विश्वास था कि बस एक ही गदा के प्रहार से मेरा काम हो जाएगा, कुछ दूसरा कुछ काम करना ही नहीं पड़ेगा। क्या जरूरत है सेना की और क्या जरूरत है रथ की, मेरे दो भुजाओं में इतनी शक्ति है कि एक गदा के प्रहार से कृष्ण को खत्म कर दूंगा, कुछ और जरूरत है ही नहीं। तो पूरे विश्वास से और पूरी शक्ति से उसने गदा का प्रहार किया कृष्ण के सिर में। एवं रुक्ष सुदन वाक्य कृष्णम तोत्रेरिवेद्युपम गदया ताडयन मूर्धनि सिंहवंद्यन दत्तसह। तो गदा के द्वारा कृष्ण के सिर में आघात किया और शेर के समान गर्जना की उसने, मतलब बड़े विश्वास के साथ कि मैंने खत्म कर दिया कृष्ण को। लेकिन हुआ क्या, दंत वक्र की गदा से कृष्ण के सिर पर आघात हुआ किंतु यदुओं के उद्धारक कृष्ण युद्ध स्थल में अपने स्थान से रंच मात्र भी नहीं हिले। जैसे हाथी को फूल की माला से प्रहार किया जाए है ना, तो हाथी को कुछ असर नहीं करता है। और अब भगवान ने क्या किया, अपनी भारी कौमोद की गदा से उन्होंने दंत वक्र के छाते के बीच में प्रहार कर दिया। इससे भी पता चलता है कि दंत वक्र का शरीर काफी बड़ा था। तो भगवान ने जब अपनी गदा मारी तो भगवान की गदा उसकी छाती तक ही पहुंची। वो भगवान से काफी बड़ा था इसलिए भगवान के सिर में उसने गदा का प्रहार किया, क्योंकि काफी बड़ा होने के कारण भगवान के सिर में ही प्रहार कर सकता था, भगवान का शरीर छोटा है उसकी तुलना में। लेकिन जब भगवान उस पर गदा का प्रहार करते हैं तो चूंकि ऊंचा था वो, तो भगवान की गदा उसके सीने तक ही पहुंची। लेकिन यहीं से ही काम हो गया, पूरा काम हो गया। तो छाती के बीच में भगवान ने अपनी गदा का प्रहार किया। गदया भी हतो प्याजों नाच चाले यदून वहां कृष्णोपि तम हन गुरिया कौमोदक्यासनंतरे। समाप्त। जितना उसको विश्वास था अपनी एक गदा पर है? तो हुआ उसका उल्टा, कृष्ण की एक गदा से उसका ही काम समाप्त हो गया। उसका हृदय क्या हो गया, छिन्न भिन्न कई टुकड़े। जैसे कि बम फटता है ना तो शरीर के कई टुकड़े हो जाते हैं, तो कृष्ण की गदा से उसके क्या हो गया, सीने के कई टुकड़े हो गए और खून उगलता हुआ निर्जीव होकर भूमि पर गिर पड़ा। उसके बाल बिखर गए, उसकी भुजाएं और पांव छितरा गए। तो उसी प्रकार से जो है बराह भगवान ने भी उसका हिरण्याक्ष का जब वध किया था तो एक तमाचा मारा था है ना, उसी से उसका काम तमाम हो गया था है ना। तो गदया निर्भिन्न हृदय उद्वमन रुधिरम मुखात् प्रसारिकेश बाहवंगीं धरण्याम न्यपतन व्यसुहु। तो फिर शिशुपाल के समान ये भी घटना हुई दंत वक्त्र के मरने पर। क्या हुआ, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे राजन, उस असुर के शरीर से एक अत्यंत सूक्ष्म और अद्भुत प्रकाश की चिंगारी सबों के देखते देखते निकली और कृष्ण में प्रवेश कर गई, ठीक उसी प्रकार जब शिशुपाल मारा गया था। तो सबने देखा। तथा सूक्ष्म तरम ज्योति कृष्णमाविशन्दन भूतम पश्यताम सर्वभूतानां यथा चैद्यवधेन लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ। एक मरा, मर जाने दो तो दूसरा तैयार है। एक दूसरा दुश्मन वो कौन है, विदुरत। विदुरत ये दंत वक्र का छोटा भाई है। तभी दंत वक्र का भाई विदुरत अपने भाई की मृत्यु के शोक में मग्न होकर हांफता हुआ और अपने हाथ में तलवार और ढाल लिए हुए आया। वो भगवान को मार डालना चाहता था। विदुरथस्तु तन भ्राता भ्रातृ शोक परिप्लुता आगच्छन् असि चरमाभ्याम उच्छसं तन जिघांसयाम। तो उस समय क्या हुआ, विदुरथ ने कृष्ण पर आक्रमण किया। लेकिन तब तक कृष्ण का चक्र चला, कृष्ण का चक्र चला और उसके सिर को मुकुट और कुंडलों के सहित काट के अलग कर दिया। तस्य चापतता कृष्ण चक्रेण छुरने मिना सिरोजहारे राजेन्द्र सकिरीटम सकुंडलम। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि ये एक ही घटना है जिसमें तीन शत्रु मारे गए भगवान के। एक तो साल्व मारा गया और दूसरा दंत वक्र और तीसरा विदुरथ। तीन शत्रु मारे गए। साव नष्ट हुआ, उसके साथ उसका सौफ विमान भी नष्ट हुआ और फिर दंत वक्र और उसका छोटा भाई, ये तीनों जो है सबके लिए अजय थे, बहुत जो है बलवान योद्धा थे। बहुत ही मुश्किल था इनको मारना। तो इनके नष्ट होने के बाद क्या हुआ, देवताओं ने भगवान की प्रशंसा की, मनुष्यों ने भगवान की प्रशंसा की, ऋषियों ने भगवान की प्रशंसा की, सिद्धों ने, गंधर्वों ने, विद्याधरों ने और महोरगों ने भगवान की प्रशंसा की। और इसके अलावा अप्सराएं नृत्य करती हैं, पितर लोग जो है स्तुति करते हैं, यक्ष, किन्नर, चारण, ये सब भगवान की स्तुति करते हैं। बहुत जो है ये खुशी का ये कार्य हुआ है। भगवान का यशोगान करते हैं, भगवान के ऊपर फूलों की वर्षा करते हैं। उस समय भगवान जो है वृष्णिवंशियों के साथ अपनी राजधानी में प्रविष्ट हुए। उस समय भगवान की राजधानी बहुत सजाई गई है। कौन सी राजधानी भगवान की, द्वारका। तो भगवान बहुत समय के बाद द्वारका में प्रविष्ट हुए हैं। क्यों? इंद्रप्रस्थ गए थे तो याद होगा कि भगवान इंद्रप्रस्थ जब गए थे उसके पहले क्या था, 20,800 राजाओं का संदेश आया था गिरिब्रज में जरासंध के द्वारा, जो बंदी किए गए थे हैं? तो ये बहुत लंबा समय था कि भगवान द्वारका से गए, सोचो बहुत लंबा समय था, क्योंकि द्वारका से भगवान वहां नहीं गए, गिरिब्रज में नहीं गए, भगवान द्वारका से गए इंद्रप्रस्थ, और इंद्रप्रस्थ में कई दिन रहे और फिर विचार किया राजसूय यज्ञ करने का। इसके बाद फिर चारों भाइयों को चारों दिशाओं में भेजा गया और फिर चारों भाई चारों दिशाओं से जीत करके आए। सोचो कितना दिन लग गए, कितने दिन लग गए, और उसके बाद जरासंध नहीं जीता गया, तो फिर अर्जुन और कृष्ण और भीमसेन तीन मिलकर के फिर गिरिब्रज गए, जरासंध के राज मगध में गए, फिर जरासंध को मारा। तो कई दिन तक तो भीमसेन का जरासंध के साथ युद्ध चलता रहा, है ना? तो सोचो कितने दिन बीत गए, और फिर जरासंध को मार करके आए, फिर राजसूय यज्ञ किया, और राजसूय यज्ञ करने के बाद भी युधिष्ठिर महाराज ने रोक लिया भगवान को, तो बहुत दिन बीत गए। द्वारका वासियों के लिए तो जो है थोड़ा सा भी समय भगवान के बिना बड़ा मुश्किल होता है, और फिर ये तो बहुत ज्यादा समय था। और फिर जब भगवान आए द्वारका में तो साल से युद्ध में लग गए, है ना, तो और ज्यादा दिन बीत गए। और फिर जो है साल को मारने के बाद दंतवक और विदुरत का वध किया, तो और समय बीत गया, है ना। अब जो है भगवान द्वारका में आए हैं, तो सोचिए कि द्वारका वासियों को कितनी खुशी नहीं होगी और कितना सजावट नहीं हुआ होगा द्वारका में। तो भगवान जो है अब द्वारका में जो है प्रविष्ट हुए। एवं सौभम च साल्वम च दंतवक्रम सहानुजम हत्वा दुर्विषहानन्यैरीरिता स्वरमानवैर मुनिभिः सिद्ध गंधर्वैर विद्याधर मोरगे अप्सरोभिः पितृगणैर यक्षै किन्नर चारणैर उपगीयमान विजयम् कुसुमैरभिवर्षिता ऋतश्च वृष्णी प्रवरैर विवेशालंकृतां पुरीं। इस प्रकार समस्त योग शक्तियों के स्वामी और ब्रह्मांड के स्वामी भगवान कृष्ण सदैव विजयी होते हैं। एकमात्र पशु दृष्टि वाले ही ये सोचते हैं कि कभी कभी भगवान की हार होती है। जिनकी दृष्टि पशुओं के समान है वो ऐसा सोचते हैं। एवं योगेश्वर कृष्ण भगवान जगदीश्वर इयते पशु दृष्टि नाम निर्जितो जयतीति सहा। अब इसके तात्पर्य में काफी गहरी बातें हैं। दंत वक्र का जो वध है वैसे तो लगता है कि भाई द्वारका में ही हुआ, लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर व्याख्या देते हैं, कहां से, पद्म पुराण के उत्तरखंड से बताते हैं कि जब शिशुपाल का वध हुआ था तो भगवान इंद्रप्रस्थ में थे, तो वहां शिशुपाल का वध का जो समाचार है जब दंत वक्र को मिला तो वो जो है आया मथुरा। आप समझे, तो द्वारका में नहीं वध हुआ दंत वक्र का, वो मथुरा में हुआ। वो मथुरा में आया और उसको जो ना इतनी पता था कि कृष्ण मथुरा में है, दिमाग भी खराब था उसका, तो वो कुछ उसको पता था या पता नहीं था कि भगवान मथुरा में नहीं है। कितने साल बीत गए भगवान मथुरा को छोड़कर के द्वारका चले गए, तो उसके दिमाग में था कि कृष्ण मथुरा में है, तो मथुरा में ही वो मतलब पहुंचा, कृष्ण को ढूंढ रहा था। और अभी वो इतना पागल था कि वो कुछ सोच नहीं पा रहा था कि क्या करूं, और बहुत बेचैन था और वो मथुरा में ही कृष्ण को मारने के लिए जो है ना ढूंढ रहा था कृष्ण को। तो उसकी बेचैनी देख करके नारद जी को बड़ी दया आ गई ये तो जाएगा नहीं कहीं, हा? जा भी नहीं सकता और समझ भी नहीं सकता है कि कृष्ण कहाँ पर हैं, तो मैं कृष्ण को ही समझा दूं। तो नारद जी जो ना कृष्ण के पास जब आए तो उस समय साल्व का वो अभी अभी वध हुआ था, तो जब कृष्ण को समाचार मिला कि दंत वक्र मुझको ढूंढ रहा है, याद कर रहा है बेचारा मथुरा में, तो कृष्ण जो ना फिर अपने रथ से तुरंत द्वारका से मथुरा आ गए। उनके लिए कोई भगवान है, उनके लिए कुछ भी दिक्कत नहीं है। एक क्षण में अपने रथ को उन्होंने आकाश मार्ग से चला करके और मथुरा में ले आए। और मथुरा के द्वार पर जो है दंत वक्र का युद्ध हुआ, तो पूरा दिन रात चलता रहा, 24 घंटे भगवान के साथ उसका युद्ध चलता रहा, और अंत में भगवान कृष्ण की गदा से दंत वक्र मारा गया। तो वो स्थान जो है, जो मथुरा में जहां दंत वक्र मारा गया था, वो स्थान दतिहा कहलाता है, दतिहा। तो मथुरा मंडल परिक्रमा में, ब्रज मंडल परिक्रमा में दतिहा ये स्थान मिलता है जहां भगवान ने उसका वध किया था। और ये भगवान कृष्ण के प्रपौत्र जो वज्रनाभ थे, उन्होंने उस स्थान का नामकरण किया था, दतिहा स्थापना की थी उस स्थान की। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ? जब भगवान दंत वक्र का वध करते हैं तो आपको पता है कि भगवान कहां पर है, मथुरा में। तो मथुरा तो खैर खाली है, क्योंकि सब मथुरावासी तो द्वारका में आ गए, लेकिन मथुरा के पास ही क्या है, वृंदावन, जहां उनके सब ना संबंधी हैं, गोप गौएं और गोपियां नंद यशोदा हैं। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि भगवान मथुरा आए और फिर उनसे ना मिले, ब्रजवासियों से ना मिले? तो भगवान फिर ब्रजवासियों से मिले, इसके पहले भगवान नहीं मिल पाए, द्वारका से भगवान ब्रज में नहीं आ पाए। क्यों? क्योंकि द्वारकावासी जो है, जो कृष्ण के माता पिता हैं, वो कृष्ण को अनुमति नहीं देते ब्रज जाने की। क्यों? उनको डर है, क्योंकि तो ब्रजवासी इतना प्रेम करते हैं कि कृष्ण उनके प्रेम में बंध सकते हैं और फिर द्वारका ना आए, है ना, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कृष्ण को द्वारका से जो है ना ब्रज में जाने की अनुमति कभी नहीं दी गई। बलराम जी तो चले गए फिर भी, लेकिन कृष्ण को अनुमति नहीं मिली। लेकिन जब दंत वक्र को मारने के लिए आए भगवान, तो अब तो जो है ना कृष्ण को मौका मिल गया है? तो फिर तो वो ब्रजवासियों से मिले। जब ब्रजवासियों से मिले तो 2 महीना जो है भगवान वहां ब्रज में रहे, और पद्मपुराण में ये भी लिखा है कि फिर ब्रजवासियों को जो है अपने गोलोक धाम के विमान में बैठा करके भगवान गोलोक धाम ले गए, और एक रूप से जो है फिर वापस द्वारका आ गए है? लेकिन जो है ब्रजवासियों को अपने धाम में भेज दिया, अपने गोलोक धाम में भेज दिया। तो इस प्रकार से काफी इसमें रहस्य है। तो अब आगे बलराम जी ने सुना कि कौरवों और पांडवों के युद्ध की तैयारी हो रही है, तटस्थ होने के कारण वे तीर्थ स्थानों में स्नान के लिए जाने का बहाना करके वहां से कूच कर गए। तो ये घटनाक्रम है इस प्रकार से कि दंत वक्र का वध किया और उसके बाद जो है महाभारत का युद्ध हुआ, है ना। तो जब भगवान इंद्रप्रस्थ में थे, राजसूय यज्ञ हुआ, तो वहां से जब भगवान आए द्वारका में, साल्व का वध किया, तो ये सब घटनाएं तो यहां पर चलती रही। और वहां पर क्या हुआ, उन्होंने कौरवों ने पांडवों को निमंत्रण दिया जुआ खेलने का, तो कृष्ण यहां पर फंसे हैं, और वहां पर अब पांडवों के ऊपर विपत्ति आ गई। कौरवों ने हस्तिनापुर में बुलाया, जुआ खेला, द्रौपदी का अपमान किया, और फिर उनको 12 साल का वनवास दे दिया, 1 साल का ज्ञातवास दे दिया। तो इस प्रकार से जो है ये घटनाक्रम है। तो 13 साल के बाद फिर जो है महाभारत युद्ध जब हुआ तो कृष्ण तो मध्यस्थ नहीं है, कृष्ण पांडवों के पक्ष में है, लेकिन बलराम जी मध्यस्थ हैं, बलराम जी मध्यस्थ हैं, है? तो जब वो देख रहे हैं कि कृष्ण खुद युद्ध कराना चाहते हैं, कृष्ण युद्ध करने के पक्ष में है, है? तो फिर बलराम जी ने विचार किया कि मैं कृष्ण का तो विरोध कर नहीं सकता, है ना, इसे क्या करूं, मैं चला जाऊं, क्योंकि नहीं तो फिर युद्ध में भाग लेना पड़ेगा, अब मैं कैसे युद्ध में भाग लूं, है? क्योंकि कृष्ण के विरुद्ध कोई काम मैं करना नहीं चाहता हूं, है? तो मैं तो युद्ध करना नहीं चाहता, कृष्ण युद्ध चाहते हैं, तो अच्छा यही है कि मैं चला जाऊं। तो उन्होंने तीर्थ यात्रा का बहाना किया और चले गए। श्रुत्वा युद्धोद्यमं रामः करुणां सह पांडवे तीर्थाभिषेक व्याजेन मध्यस्था प्रयोकिल। तात्पर्य में लिखा है बलराम जी को दुर्योधन और युधिष्ठिर दोनों ही प्रिय थे, अतएव विषम स्थिति से बचने के लिए वे चले गए। यही नहीं, विदुरत को मारने के बाद भगवान कृष्ण ने अपने हथियार रख दिए, किंतु बलराम को तो अभी भी रोमहर्षण और बलबल को मारकर पृथ्वी को असुरों के भार से छुटकारा दिलाना शेष था। हाँ, तो भगवान कृष्ण जो है विदुरत को मार करके फिर विश्राम घाट में स्नान करते हैं और फिर प्रतिज्ञा करते हैं कि अब आगे से शस्त्र नहीं उठाएंगे, क्योंकि अब सब शत्रुओं का नाश हो गया। भगवान ने यही मान लिया कि हमारे शत्रुओं का नाश हो गया, है ना, इसलिए महाभारत युद्ध में फिर भगवान ने कहा ना कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, है ना, क्योंकि उन्होंने यही माना कि जो हमारा कार्य था वो पूरा हो गया, अब तो जो मुझे काम कराना है अर्जुन के हाथों से तो वो अर्जुन के हाथों से कराऊंगा। इसलिए भगवान ने विचार कर लिया था कि अब मैं कुछ अपने हाथ से काम नहीं करूंगा, असुरों का हत्या, असुरों का वध। अच्छा, तो यहाँ एक शिक्षा भी मिलती है कि अगर घर में, घर के अंदर अगर ऐसा कुछ लड़ाई झगड़ा हो जिसको आप नहीं चाहते हो तो क्या करो, तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाओ। अगर घर में कुछ ऐसी लड़ाई झगड़ा हो कि भाई आप नहीं चाहते हो इसमें भाग लेना और आप रोक भी नहीं पाते हो तो क्या करो, तीर्थ यात्रा के लिए चले जाओ। तो बलराम जी जो है तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। तो कहाँ कहाँ गए, प्रभास में स्नान किया, ठीक है, प्रभास वही द्वारका के पास ही है, प्रभास में स्नान किया और देवताओं ऋषियों पितरों को तृप्त किया और फिर ब्राह्मणों को साथ लेकर के सरस्वती के उस भाग में गए जो पश्चिम के समुद्र में बहती है। स्नात्वा प्रभासे संतर्पिं देवर्षे पितृ मानवान् सरस्वतीं प्रति स्रोतम् ययो ब्राह्मण समृतः। तो इसमें ये बात समझना है कि बहुत से ब्राह्मण भी बलराम जी के साथ हैं, अभी ब्राह्मण लोग भी कितने भाग्यशाली हैं कि भगवान बलराम के साथ जो है तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं, कितने भाग्यशाली हैं। बलराम जी फिर कहाँ कहाँ गए, पृथ्वी तक तीर्थ में गए, बिंदु सरोवर में गए, तृत कूप में गए, सुदर्शन तीर्थ में गए, विशाल और फिर ब्रह्म तीर्थ, फिर चक्र तीर्थ, फिर पूर्व दिशा में जो सरस्वती नदी है वहां गए, फिर यमुना और गंगा के तटवर्ती सारे तीर्थों में गए, गंगा के किनारे किनारे जितने तीर्थ हैं, यमुना जी किनारे किनारे जितने तीर्थ हैं उन सब में गए, और तब कहाँ आए, नैमिषारण्य में आए। नैमिषारण्य कहाँ पर है, लखनऊ के पास है, वहां पर आए जहां पर ऋषिगण यज्ञ संपन्न कर रहे थे। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि लोग एकत्रित हुए हैं, यज्ञ कर रहे हैं और उसी यज्ञ में फिर उन्होंने 18 पुराण श्रवण किए, सूत रोमहर्षण नाम के सूत से, रोमहर्षण नाम के सूत से 18 पुराण सुनना था, लेकिन बलराम जी के द्वारा जब वे मारे गए तो उनके पुत्र उग्रसेवा नाम के सूत 18 पुराण ऋषियों को सुनाते हैं। प्रथोदकम बिंदु सरस त्रितगोपं सुदर्शन विशालं ब्रह्मतीर्थं च चक्रं प्राचीं सरस्वतीं यमुनां मनु यान्येव गंगां मनु च भारत जगाम नैमिषं यत्र ऋषियां सत्रमासते। हाँ, तो जैसे ही भगवान बलराम आए, जो ऋषि लोग थे वो बहुत समय से यज्ञ कर रहे थे, तुरंत खड़े होकर के नमस्कार किया और पूजा की बलराम जी का और सत्कार किया। ऋषि लोग तमागतम अभिप्रेत्यम मुनयो दीर्घ सत्रिणाम अभिनंदे यथा न्यायम प्रणम्यो उत्थाय चार्चयन। अब बहुत से ब्राह्मण तो बलराम जी के साथ भी हैं और यहाँ पर भी बहुत से ब्राह्मण हैं जो स्वागत कर रहे हैं बलराम जी का, है ना। तो उन सब ब्राह्मणों ने बलराम जी के साथ इन ब्राह्मणों का भी स्वागत किया, है? और भगवान ने जो है ना आसन वहां पर स्वीकार किया और तब उन्होंने देखा, क्या देखा, कि पहले से ही रोम हर्षण बैठे हुए हैं अपने व्यास आसन पर, है? और ऐसे बैठे हैं, है? मतलब जैसे कुछ जानते नहीं है कि बलराम जी कौन है। बलराम जी का सम्मान कर रहे इतने ब्राह्मण लोग। सोर्जिता स परिवार कृतासन परिग्रह रोम हर्षण मासीनम महर्षे शिष्य में क्षत। तो बलराम जी ने देखा कि महर्षि के शिष्य हैं, महर्षि मतलब व्यास जी, व्यास जी के शिष्य हैं रोम हर्षण, है? और वो बैठे हुए हैं, है? ऊंची आसन पर बैठे हुए हैं। और इन्होंने रोमहर्षण ने क्या किया, मतलब कुछ भी सम्मान नहीं किया इतने ब्राह्मणों का। पहले से ब्राह्मण लोग नीचे बैठे हैं, ये ब्राह्मणों से ऊपर बैठे हुए हैं और बलराम जी के साथ भी जो ब्राह्मण हैं उनका भी सम्मान नहीं कर रहे हैं, है ना। तो बलराम जी को जो है ये अच्छा नहीं लगा। तो बलराम जी ये देखकर बहुत क्रुद्ध हुए कि सूत जाति का ये सदस्य किस तरह है, उठकर खड़े होने में असफल है, नमस्कार करने में असफल है, हाथ जोड़ने में असफल है, और किस तरह समस्त विद्वान ब्राह्मणों से ऊपर बैठा हुआ है। मतलब थोड़ा सा भी इशारा भी नहीं सम्मान करने का, कि अगर ऊंचे आसन पर बैठे हैं तो इशारा भी करे सम्मान करने का, हाथ जोड़ करके भी सम्मान कर सकता है, है ना। लेकिन बिल्कुल जैसे पत्थर की तरह बैठा है, है ना, ये बहुत ही अशोभनीय है, जरा भी शोभा नहीं देता। कि कोई व्यक्ति आया, तुम जो है ना आदमी हो या जानवर हो, कि बिल्कुल देखते नहीं हो, हा? कि कौन आया है, और किस व्यक्ति का कितना सम्मान है। तो बलराम जी ने जब देखा तो उनको बहुत ही क्रोध आया। अप्रत्युत्थायिनम सोतम अकृत प्रेमणांजलिम अध्यासीनम च तान विप्रां चुकोपोन्वीक्ष माधव। तो बलराम जी को जो है गुस्सा इस बात पर आया कि ब्राह्मणों से ऊपर आसन पर बैठा भी है और जो और भी ब्राह्मण आए उनके साथ में उनका भी सम्मान नहीं कर रहा है, बलराम जी का सम्मान नहीं कर रहा है। तो बलराम जी एक प्रकार से भी सोचते हैं, चलो ठीक है, अगर मेरा सम्मान नहीं कर रहा है तो वे तो मनुष्य की लीला कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ब्राह्मणों के बीच में बलराम जी का सम्मान करना चाहिए क्योंकि ब्राह्मण लोग जानते हैं कि भगवान है, है ना। तो फिर ऐसी स्थिति में जो है ना और दूना अपराध लग रहा है, ब्राह्मणों का भी सम्मान नहीं कर रहा है और जिस व्यक्ति का ब्राह्मण लोग सम्मान कर रहे हैं उसका भी सम्मान नहीं कर रहा है, है ना। तो फिर क्या 18 पुराणों में इसने क्या सीखा, 18 पुराणों में तो बलराम जी का कितना गुणगान है, है ना। तो ये 18 पुराण सुनाने के लिए बैठा है लेकिन इसको जो है ना कुछ भी व्यवहार पता नहीं है, व्यवहारिक रूप से कुछ भी नहीं जानता है। तात्पर्य लिखा है रोम हर्षण ने वरिष्ठ पुरुष का स्वागत करने की आदर्श विधियों में से किसी के द्वारा भी बलराम जी का सत्कार नहीं किया। साथ ही निम्न जाति का होने पर भी उच्च ब्राह्मणों की सभा में ऊंचे आसन पर बैठा रहा। तो गोपी प्राणधन प्रभु बता रहे थे कि सूत जाति जो है ना, जानते कौन होता है? क्षत्रिय पिता और माता हो ब्राह्मण, तो ये प्रतिलोम विवाह कहलाता है। प्रतिलोम विवाह जो है ना, ये अच्छा नहीं माना जाता है। अनुलोम विवाह में क्या होता है कि अगर पुरुष ऊंची जाति का हो और स्त्री जो नीच जाति की हो तो अनुलोम विवाह है, ये चलता है। ब्राह्मण पुरुष हो और पत्नी अगर क्षत्रिय हो या वैश्य हो तो चलता है, अनुलोम है। ये प्रतिलोम जो है ना, क्या है कि जो पति है वो नीची जाति का और पत्नी ऊंची जाति की हो, तो ये प्रतिलोम विवाह कहलाता है। तो सूत जो है ना, उन्हें कहते हैं जिसका पिता क्षत्रिय हो और माता ब्राह्मण हो, है ना। तो अब ये जो सूत है, ये ना तो ब्राह्मण माना जाता है ना क्षत्रिय माना जाता है, लेकिन दोनों प्रकार के कार्य में कुछ सहायता कर सकते हैं। ये सूत जो है क्षत्रियों के कार्यों में सहायता करते हैं, तो रथ चलाते हैं, तो सूत उसको कहते हैं जो रथ चलाए, हाके सारथी, उसको सूत कहते हैं। और ब्राह्मणों के कार्यों में सहायता करे तो क्या है, पुराणों की कथा सुनाए सूत। वेदों में अधिकार नहीं है, ब्राह्मणों को वेदों में अधिकार होता है, तो सूतों को वेदों में अधिकार नहीं होता है, वो पुराण सुना सकते हैं, पुराणों का अध्ययन कर सकते हैं। तो रोम हर्षण जो सूत थे, ये 18 पुराण उन्होंने प्राप्त की थी व्यास जी से, लेकिन इनका वेदों में अधिकार नहीं था। तो बलराम जी को जो है ना, इसलिए क्रोध आया कि ब्राह्मणों से ये बहुत नीचा है ये व्यक्ति, और पहले से ब्राह्मणों से ऊपर बैठा हुआ है, और भी जो ब्राह्मण आए उनका भी सम्मान नहीं कर रहा है। तो बलराम जी ने उस समय जो है इतना ज्यादा उसका अपराध देख करके ये विचार नहीं किया कि ब्राह्मणों ने, जो पहले से ब्राह्मण बैठे हुए थे उन्होंने इसको ऊंचा आसन दिया है इसलिए वो बैठा हुआ है। खैर जो भी हो, अगर ऊंचा आसन दिया है तो भी ऊंचे आसन पर बैठे बैठे भी प्रसन्नता के द्वारा भी सम्मान कर सकता था, ये सारा प्रसन्नता का इशारा करके भी सम्मान कर सकता था, हाथों के द्वारा आंखों के द्वारा भी सम्मान कर सकता था, है ना। लेकिन बिल्कुल जैसे कुछ सीखा नहीं है। तो बलराम जी ने कहा कि ये प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न हुआ मूर्ख है, इन सारे ब्राह्मणों से ऊपर बैठा हुआ है और मुझ धर्म रक्षक से ऊपर भी ये बैठा है, इसलिए ये मृत्यु का पात्र है। यस्मा दशा विमान विप्रान अद्यासे प्रतिलोम जहां धर्म पालन तथैवास्मान वदे मरहति दुर्मति। यद्यपि ये दिव्य मुनि व्यास जी का शिष्य है और इसने उनसे अनेक शास्त्रों को सीखा है, धार्मिक संहिताएं इतिहास पुराण ये सब सीखे हैं, परंतु इसमें कोई सद्गुण उत्पन्न नहीं हुआ। विद्या विनय संपन्न, विद्या के साथ विनय भी होना चाहिए ना, तो विनय नहीं आई, बल्कि शास्त्र का अध्ययन इसने जो किया है ये कैसा है, नट के समान है। नट नाटक में जो नट होता है वो अपना पाठ अदा करता है, उसने रट लिया है जो, तो अपना वही बोलता है। किसी को रावण का पाठ दिया गया है तो अपने रावण का पाठ वो बोल देता है, किसी को राम का पाठ दिया गया तो राम का पाठ बोलता है, कोई गुण थोड़ी उसके अंदर वैसे होते हैं। इसी प्रकार से बलराम जी कहते हैं 18 पुराण भी इसने जो याद कर ली हैं, ये खाली इसने रटी हैं, इसके अंदर कोई गुण नहीं प्राप्त हुआ है। ये आत्मसंयमी नहीं है ना विनीत है, व्यर्थ ही विद्वान होने का ढोंग करता है, इसने अपने मन को भी नहीं जीता है। ऋषिर भगवतो भूतवान शिष्योदित्य बहुनि च इतिहासे पुराणानि धर्मशास्त्राणि सर्वशः अदान्तस्य विनीतस्य वृथा पंडित मानिना न गुणाय भवन्त्यस्मिन् नटस्यैवाजितात्मनः। तात्पर्य लिखा है, कोई ये तर्क कर सकता है कि रोम हर्षम ने बलराम जी को ना पहचानने की निर्दोष भूल की है, किंतु ऐसे तर्क का निराकरण बलराम द्वारा तीखी आलोचना से हो जाता है कि बलराम जी को नहीं पहचान पाए। कैसे नहीं पहचान पाए बलराम जी को? इतने ऋषि मुनि जो है जब बलराम जी का सम्मान कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, ऊंचा आसन दे रहे हैं, तो सोचना चाहिए। और फिर पुराणों में भी बलराम जी का जब गुणगान है तो फिर समझना चाहिए, है ना। तो इसलिए बलराम जी उसको मार रहे हैं तो ऐसे नहीं मार रहे हैं कि बिना सोचे समझे, बता रहे हैं सब कुछ, उसको भी सुना रहे हैं कि मैं तुझको मार रहा हूं। क्यों मार रहा हूं? क्योंकि कुछ ऐसे कारण हैं जिनसे तुझको मार डालना चाहिए। हाँ, बलराम जी कहते हैं इस संसार में मेरी अवतार का उद्देश्य भी ये है, क्या ऐसे पाखंडियों का वध किया जाए जो धार्मिक बनने का स्वांग रखते हैं, ये तो बहुत बड़े पापी हैं, ये ज्यादा पापी हैं। एतदर्थो हि लोकेऽस्मिन् अवतारो मया कृतः वध्यामि धर्मध्वजिनः तेहि पातकिनोऽधिकः। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं यद्यपि भगवान बलराम ने यद्यपि वध कार्य बंद कर दिया था, किंतु रोम हर्षण की मृत्यु तो होनी थी, इसलिए ऐसा कहकर भगवान ने कुसा का एक तिनका उठाकर उसकी नोक से उनको मार डाला। देखो, कुसा की नोक से ही मार दिया। ये तामदुक्त्वा भगवान निमृतो संवदादपि भावित्वा तम कुसाग्रेण करस्ते नाहनत् प्रभु। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं श्री बलराम ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में भाग लेने से अपने को दूर रखा था, फिर भी अपने पद के कारण धार्मिक सिद्धांतों की पुनर्स्थापना उनका प्रमुख कर्तव्य था। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कुछ के तिनके से प्रहार करके रोम हर्षण सूत को मार डाला। वो तिनका घात की एक पत्ती मात्र था। यदि कोई व्यक्ति ये प्रश्न करे कि बलराम जी ने कुसा के प्रहार से रोम हर्षण का वध किस प्रकार कर दिया, इसका उत्तर श्रीमद् भागवत में प्रभु शब्द के प्रयोग से हुआ है। करस्ते नाहनत् प्रभु, प्रभु है, प्रभु मतलब सर्वशक्तिमान, भौतिक नियमों का पालन किए बिना इच्छानुसार कार्य कर सकते हैं। अतिरिक्त कुसा के प्रहार से रोम हर्षण सूत का वध करना उनके लिए संभव था। उससे क्या हुआ, जो सोनक आदि ऋषि लोग जिन्होंने उनको आसन पर बैठाया था, बड़े आसन पर बैठाया था, वो हाय करने लगे। वे सारे मुनि हाय हाय करके चिल्ला पड़े। उन्होंने भगवान शंकर से कहा, हे प्रभु, आपने ये अधर्म कर दिया है। हा हे ते मादिन हम सर्विन मुनिया खिन्न मानसा पूछो संकर्षणम देवम अधर्मस्ते कृता प्रभु। वे भी प्रभु कह रहे हैं, जो ऋषि मुनि है वो भी प्रभु कह रहे हैं। ऋषि मुनि जब प्रभु कह रहे हैं तो किस भाव से कह रहे हैं प्रभु, कि आपके लिए तो कोई दोष नहीं लगता है, आपने जो किया उससे आपको कोई भी कर्म का दोष नहीं लगता क्योंकि आप भगवान हैं। परंतु हमारी समस्या है क्या, हे यादवों के प्रिय, हमने उसे आध्यात्मिक गुरु का आसन प्रदान किया था, उसे दीर्घ आयु दी थी, मतलब 1000 साल तक जो है आयु दी थी, और किसी प्रकार के शरीर में बाधा ना पड़े, कोई कष्ट ना हो, हमने वरदान दिया था जिससे कि वो बिना किसी बाधा के 18वां पुराण सुनाए। अस्य ब्रह्मासनम दत्तम अस्माभिर् यदो नंदन आयुश्चात्मा क्लमं तावन् यावत् सत्रं समाप्यते। आपने अनजाने में एक ब्राह्मण का वध कर दिया है। क्यों, हालांकि ब्राह्मण नहीं है लेकिन तो अभी ब्रह्म हत्या हो गई। क्यों, क्योंकि ब्राह्मणों ने उनको ऊंचा आसन दिया है, हाँ, तो ऋषि लोग क्या कह रहे हैं कि यद्यपि ब्राह्मण नहीं था वो, लेकिन तो भी ब्राह्मण की हत्या का दोष लग रहा है इस कार्य में। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों ने उसको अपने से बड़ा आसन दिया था, इसलिए ब्रह्मासन, उसको कहते ब्रह्मासन दिया है। आपने अनजाने में एक ब्राह्मण का वध कर दिया है। हे योगेश्वर, शास्त्रों के आदेश भी आपको आज्ञा नहीं दे सकते, किंतु यदि आप स्वेच्छा से इस ब्राह्मण के वध के लिए प्रायश्चित करेंगे तो सामान्य लोग आपके उदाहरण से बहुत लाभान्वित होंगे। लोक पावन, हे जगत के पालन करता, पावन करता, हे जगत के पावन करता, यानी पूरे जगत को पवित्र करने वाले, अगर आप प्रायश्चित करोगे तो अच्छा है, लोगों को शिक्षा प्राप्त होगी। अजानते वा चरितस तो या ब्रह्म वधो यथा योगेश्वरस्य भवतो नाम्नायोऽपि नियामकः यद्येतन् ब्रह्महत्यायां पावनं लोकपावन करिष्यति भवान् लोक संग्रहो नन्यचोदितः। अनन्यचोदितः मतलब बिना किसी के कहे अगर आप स्वयं अपनी इच्छा से करें तो ज्यादा अच्छा होगा। मतलब ये शिक्षा देने के लिए कि भाई आप गलती से अगर कुछ गलत काम करते हो तो आप इसका प्रायश्चित करो, अनजान में भूल से अगर आप करते हो। भगवान से कोई भूल नहीं होती, तो भी भगवान जो है भूल करने की लीला करते हैं कि भाई भगवान ने भी भूल से ये काम कर दिया तो प्रायश्चित किया जा सकता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जानबूझ के करो और फिर प्रायश्चित करो, नहीं ऐसा नहीं होता है। कोई व्यक्ति कहे कि ठीक है मैं ब्राह्मण की हत्या कर देता हूं अभी और इसके बाद प्रायश्चित कर लूंगा, ऐसे नहीं होगा। ये भूल से ब्राह्मण की हत्या हो जाए तो फिर प्रायश्चित किया जा सकता है। तो भगवान कहते हैं मैं इस हत्या के लिए अवश्य ही प्रायश्चित करूंगा, क्योंकि मैं सामान्य लोगों के प्रति दया दिखाना चाहता हूं। इसलिए कृपा करके मुझे जो कुछ भी अनुष्ठान सबसे पहले करना हो उसका विधान कीजिए। भगवान मनुष्य की लीला कर रहे हैं, बड़े बड़े ऋषियों से पूछ रहे हैं कि विधान करो कि भाई मैं क्या इसका प्रायश्चित करूं। तो भगवान स्वयं जो है ऐसा करके ये शिक्षा दे रहे हैं कि व्यक्ति को अपने ढंग से नहीं विचार करना चाहिए कि मैं क्या करूं, उसे अधिकारी जो ब्राह्मण है उनके पास जाना चाहिए और पूछना चाहिए कि मुझे क्या करना है। चरिष्ये वध निर्वेशम लोकानुग्रह काम्ययाम नियम प्रथमे कल्पे यावान ततो विधीयताम। और फिर भगवान क्या कहते हैं कि ठीक है अगर आप लोग चाहते हो इसको मैं जिंदा कर दूं और इसको दीर्घायु दे देता हूं, जैसा आपने चाहा वैसा मैं कर देता हूं, इसको शक्ति देता हूं, इंद्रिय शक्ति देता हूं, आपका जो वचन था उसको मैं पूरा कर देता हूं। दीर्घ मायुर्वत सत्वमेन्द्रिय आशासितम यत्तन ब्रूते साधये योग मायां। भगवान कहते हैं मैं अपनी योग माया के द्वारा ये सब कार्य कर सकता हूं, मैंने इसका जो वध किया है इसको जिंदा कर सकता हूं मैं। लेकिन ऋषियों ने कहा हे राम आप ऐसा करो कि जो आपने कार्य किया है, मतलब क्या आपने जो वध किया है तो वो भी व्यर्थ ना हो, और हमारा जो वचन है कि वो ये जिंदा रहे, अधिक साल तक जिंदा रहे, वो भी जो ना सत्य हो, आप दोनों कार्य करो। आपने जो वध किया है इनको मार डाला है वो भी ठीक है ना, इनको मरना चाहिए, या हमने जो वरदान दिया था इनको बहुत साल तक हजार साल तक जिंदा रहना चाहिए है, तो वो भी होना चाहिए पूरा, आप इस प्रकार से कार्य करो। अस्त्रस्य तव वीर्यस्य मृत्योरस्माकमेव च यथा भवेद् वचः सत्यं तथा रामे विधीयताम। तो भगवान कहते हैं ठीक है अब कैसे, वेदों के जो है ना तर्क से भगवान पुष्ट करते हैं। क्या मनुष्य की आत्मा ही पुत्र रूप में पुनः जन्म लेती है? ये वेदों का कहना है। इस तरह रोमहर्षण का पुत्र कौन है? उग्रसेवा। ये पुराणों का वक्ता बने और दीर्घ आयु प्रबल इंद्रियों और बल से युक्त हो जाए। आत्मा वे पुत्र उत्पन्न इति वेदानुशासन तस्मादस्य भवेन वक्ता आयुरिंद्रिय तत्ववान। हे मुनि श्रेष्ठो, आप मुझे अपनी इच्छा बतलाओ, मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। हे बुद्धिमानों, मेरे लिए समुचित प्रायश्चित का भली भांति विधान करो, क्योंकि मैं नहीं जानता कि मुझे क्या करना चाहिए। ये काम तो मैंने कर दिया आपका, ठीक है, और बताओ कि मैं और क्या प्रायश्चित करूं। किम वा कामो मुनि श्रेष्ठाम ब्रूताम करवाण्यत अजानतस्त्वपचतिम यथा मे चिंतताम बुधा। तात्पर्य लिखा है, भगवान बलराम योग्य ब्राह्मणों के समक्ष विनीत बनकर आम जनता के लिए पक्का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। हाँ, सामान्य व्यक्ति के लिए पक्का उदाहरण क्या कि मैं नहीं जानता, आप लोग बताओ क्या है, है कि नहीं? अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। तो ऋषि लोग क्या कहते हैं? ऋषि लोग कहते हैं कि आपके लिए जो ना प्रायश्चित क्या है, आपकी योग्यता के अनुसार प्रायश्चित भी होना चाहिए। हर व्यक्ति के लिए अलग प्रायश्चित। तो बलराम जी की जो योग्यता है उसके अनुसार प्रायश्चित होना चाहिए। तो वो क्या है कि एक भयानक असुर है जिसका नाम है बलबल। वो इलबल का पुत्र है और प्रत्येक प्रतिपदा को यानी शुक्ल पक्ष के पहले दिन प्रतिपद महीने में दो बार आता है प्रतिपद, शुक्ल पक्ष का पहला दिन और कृष्ण पक्ष का पहला दिन। हाँ, लेकिन यहां पर है शुक्ल पक्ष का पहला दिन, मतलब महीने में एक बार आता है बलबल। शुक्ल पक्ष पहले दिन आता है और हमारे यज्ञ को दूषित कर देता है। इलबलस्य सुतो घोरो बलबलो नाम दानवा सदोषयति नः सत्रम एते पर्वणि पर्वणि। उसका निश्चित दिन होता है, वो बलबल का दिन निश्चित है। उसका नियम है क्या है कि हर महीने के पहले दिन आएगा और जो है ना शत्रु को दूषित करेगा। क्या करता है वो? मांस मल मूत्र की वर्षा करता है ना, और यज्ञ को दूषित करता है वो। हे दसार है वंशज, कृपा करके उस पापी असुर का वध करो जो हमारे ऊपर पीव रक्त मल मूत्र शराब और मांस की वर्षा करता है, तो ये आपकी बहुत उत्तम सेवा होगी। तम पापम जहे दासार है तन्ना सुश्रोषणम परम कुवे सोणित बिन मूत्र सुरामान साभी वर्षिनम। इसके बाद आप 12 महीनों तक गंभीर ध्यान की मुद्रा में भारत वर्ष की परिक्रमा करो। 12 महीने तक पूरे भारत वर्ष की परिक्रमा करो, ये आपके लिए प्रायश्चित है। मुनि लोग निश्चित करते हैं और तपस्या करते हैं, विविध तीर्थ स्थानों में स्नान करो, इस प्रकार से आप शुद्ध होइए। तदस्य भारतम वर्षम परित्यय सो समाहिता चरित्वा द्वादश मासान तीर्थ स्नायी विशुंध्यसी। तात्पर्य में लिखा है, श्री जीव गोस्वामी इंगित करते हैं, विशुद्धसी शब्द का अर्थ है कि सामान्य जनता के समक्ष ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करके बलराम निर्मल यश प्राप्त करेंगे। और श्री प्रभुपाद लिखते हैं, ब्राह्मण जन भगवान का तात्पर्य समझ गए, इसलिए उन्होंने सुझाव दिया कि वे ऐसा प्रायश्चित करें जिससे उन सबों को लाभ हो। तो बलराम जी को जो है ऋषियों ने जो प्रायश्चित बतलाया वो तो संभव था, लेकिन जब भगवान कृष्ण ने अपना प्रायश्चित पूछा गोपियों से तो उन्होंने तो बड़ा कठिन बता दिया था। राधा रानी ने गोपियों ने बड़ा कठिन प्रायश्चित बता दिया था। जब अरिष्टासुर का वध किया था बैल के रूप में असुर का, तो बड़ा कठिन वो तो संभव ही नहीं था। भगवान बोले, बोलो क्या करूं प्रायश्चित कि मैंने बैल के रूप में असुर का वध किया है, तो क्या बोल दिया उन्होंने, पूरी पृथ्वी के जितने तीर्थ हैं सब में स्नान करो, 3.5 करोड़ तीर्थ सब में स्नान करो। भारतवर्ष के तीर्थ तो चलो इतना तो हो सकता है, और 12 महीने, चलो ठीक है 12 महीने बलराम जी तो इसलिए निकले, इस काम के लिए निकले ही थे, तो 12 महीने भारतवर्ष में भ्रमण करो, तीर्थों में स्नान करो, है ना। यहाँ कृष्ण तैयार नहीं थे 12 महीने के लिए भी व्रत से बाहर निकलने के लिए। तो राधा रानी तो कह दिया कि आप 3.5 करोड़ तीर्थों में स्नान करो। तो भगवान कहते हैं मैं कहाँ कहाँ जाऊंगा 3.5 करोड़ तीर्थों में स्नान करने के लिए, चलो मैं भी बुला लेता हूँ सबको। तो जैसे कहते हैं 100 सुनार की 1 लोहार की, लोहार अपने 1 चोट में जो ना पूरा काम कर देता है, और सुनार चोटें मारता रहता है, खट 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 घंटों चोटें मारता रहता है। तो अपना एक पैर मारा, बाएं पैर की एड़ी मारी और 3.5 करोड़ तीर्थों को बुलाया, चलो इसमें अपना अपना जल डालो। मैं स्नान करूंगा तुम सब में। तो सब तीर्थ जो ना अपना अपना जल डालते हैं। तो इस प्रकार से बलराम जी ने आदेश प्राप्त किया ऋषि मुनियों से। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध के अंतर्गत दंत वक्र विदुरत और रोमहर्षण का वध शीर्षक 78वां अध्याय पूर्ण हुआ। आप किसी का कोई प्रश्न है या कोई चर्चा? बलराम जी कृष्ण प्रभु का प्रश्न है कि जैसे बलराम जी आए नैमिषारण्य में तो वहाँ कथा सुन रहे थे ऋषि लोग, तो उन्होंने कथा बंद कर दी और बलराम जी का स्वागत किया। तो इसी प्रकार से अगर कथा चल रही है यहाँ पर और मान लीजिए कुछ भक्त लोग हैं कीर्तन करना शुरू कर दें, तो उस समय क्या कथा बंद करके कीर्तन में शामिल होना चाहिए या क्या करना चाहिए? तो इस संबंध में कई बातों पर विचार करना होगा। पहली बात तो ये है कि बलराम जी अपनी इच्छा से वहाँ पर आए, लेकिन यहाँ पर कोई व्यक्ति कीर्तन कर रहा है तो ये भगवान की इच्छा तो नहीं है कि आप कथा के बीच में कीर्तन करो। आप अपनी इच्छा से कीर्तन कर रहे हो तो एक तो ये अपराध है, और इसके अलावा बलराम जी जीवन में पहली बार ही आए थे और रुकने वाले भी नहीं थे, जाने वाले थे, बाद में भी वे दोबारा आने वाले नहीं थे। लेकिन यहाँ पर कीर्तन तो ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है और आगे कभी होगा नहीं। कीर्तन तो ऐसी चीज है जो किसी भी समय किया जा सकता है, कथा तो हमेशा नहीं मिलती। तो इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि कथा के समय पर कीर्तन करना अपराध है। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। श्री राधा पार्षदी भगवान की जय।